السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شہداء لاہور کا ذکر جاری ہے. اسی سلسلے میں کچھ اور 14 کے ذکر کرتا ہوں. مکرم عبدالرشید ملک صاحب شہید ابن مکرم عبدالحمید ملک صاحب شہید مرحوم لالا موسیٰ کے رہنے والے تھے. ان کے دادا حضرت مولوی مہر الدین صاحب رضی اللہ عنہ 313 صحابہ میں سے شامل تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو. شہید کی عمر شہادت کے وقت 64 سال تھی. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجلس انصار اللہ کے فعال رکن تھے, سیکرٹری وسایا اور تعلیم قرآن کے سیکرٹری تھے. مسجد دار الذکر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. عموماً کڑک ہاؤس میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے اور کافی عرصے بعد دار الذکر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دینا تھا. جمعہ پر جانے سے قبل اہلیہ کو کہا کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی بڑی مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہیے, اس لیے میں دار الذکر آج جا رہا ہوں. مین ہال میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. گھر فون کیا کہ میرے پاؤں میں گولی لگی ہے. ان کی بات کے دوران اہلیہ کہتی ہیں گولیوں کی آوازیں آتی رہیں. اپنا فون تو تھا نہیں, کسی کے فون سے بات کر رہے تھے. پھر بہرحال رابطہ ختم ہو گیا. اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ میں ان کی شہادت پر ان کا بھی بڑا صبر حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ پوری جماعت کا حامی و ناصر ہو اور بہت ترقی عطا فرمائے. یہ بھی لجنہ کی کارکن ہیں. کہتی ہیں کہ بطور باپ بہت شفیق انسان تھے. تین بیٹیاں ہیں اور کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے. بیٹیوں پر بہت توجہ دی اور دینی اور دنیاوی تعلیم میں ہمیشہ آگے رکھا اور برابری کا سلوک کیا تینوں بچوں سے. ایک نوزائید بچی کو بھی گھر کا کام کرنے کے لیے آتی تھی, تبلیغ کرتے رہے, اس نے بیعت کی, اس کو پالا اور اس کی شادی کے بھی انتظامات کیے تھے. اور بڑی پیار کرنے والی طبیعت تھی. دعا گو, سادہ, متقی, ملنسار اور اطاعت گزار شخص تھے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. مکرم محمد رشید ہاشمی صاحب شہید ابن مکرم منیر شاہ ہاشمی صاحب شہید مکرم مکرم شاہ دین ہاشمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پرپوتے تھے. और शहीद के वालिद मुकर्रम मोहम्मद मुनीर हाशमी साहब एबटाबाद में जनरल पोस्ट मास्टर थे, 1974 के फसादात में आपके घर को मुखालफी ने जला दिया, रेडियो पाकिस्तान पिशावर स्टूडियो में मुलाजमत करते थे, खबरें पढ़ते थे, नवाब अखबार में कॉलम नवीसी भी करते थे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 78 साल थी। मजलिस अंसारुल्लाह के बड़े फाल कारकुन थे, 16 साल तक सदर हलका भी रहे, मूसी थे अल्लाह ताला के फजल से, और आपका भी शहादत दारुल जिक्र लाहौर में हुई है, 3 गोलियां आपको लगी थी। बहुत ही प्यार करने वाले थे, जमात का दर्द रखने वाले थे, खिदमत दीन का शौक रहता था और बीवी बच्चों को भी ये तलकीन करते थे। सदर शुमाली छावनी को जुमा के रोज फोन किया कि मेरे पास जमात की एक इमानत है, जो रकम कौमी बचत से प्रॉफिट मिला था वो आकर ले जाएं। शहादत के वक्त ये रकम भी उनकी जेब में मौजूद थी और गोली लगने से इस रकम में भी पैसों पर भी नोटों पे सुराख हुए हुए थे। हर काम में पाबंदी का बहुत ख्याल था, वक्त की पाबंदी का। लाहौर में नमाज सेंटर एक बनाना चाहते थे, एक वहां के सदर साहब, लेकिन नक्शे की इजाजत नहीं मिलती थी। इन्होंने रातों रात खुद ही पेंसिल से नक्शा बनाया और इसकी मंजूरी ले ली। गैर अहमदी भी इनकी बहुत इज्जत करते थे, सारे मोहल्ले वाले ताजियत के लिए घर आए, बहुत बहादुर थे, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करे, अपने हलके को जमाती तौर पर बड़ा ऊंचा रखा हुआ था। इनके बारे में एक खत मुझे मिला ताउल कादर ताहिर साहब का, वो कहते हैं कि इंतहाई मेहमान नवाज, मिलनसार, मुनकसर मिजाज थे, तलावत और नज़म पढ़ते थे। कमजोरी सेहत के बायस चलने फिरने में दुश्वारी आती थी, लेकिन सदारत से माजूरी जाहिर करने के बावजूद जमाती कामों के लिए हर वक्त तैयार थे। खिलाफत से आपको वालियाना इश्क था और हर तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मुकर्रम मुजफ्फर अहमद साहब शहीद, इबन मुकर्रम मौलाना इब्राहिम साहब कादियानी दरवेश मरहूम, शहीद मरहूम के खुसर हज़रत मियां इल्मुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे, और उनके वालिद साबिक नाज़िर इस्लाह उर्शाद व इशाअत कादियान को हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहिबज़ादों का उस्ताद होने का शर्फ हासिल हुआ। शहीद मरहूम अपने हल्के के इमाम सलात थे, लंबे अरसे तक मजलिस धर्मपुरा के सेक्रेटरी माल रहे। शहादत के वक्त आपकी उम्र 73 साल थी और इनकी शहादत भी दारुल जिक्र में हुई। बाकायदा नमाजें दारुल जिक्र में अदा करते थे, 12 बजे जुमे की नमाज अदा करने के घर से निकल गए। बेटा नमाज जुमा के लिए मुस्लिम बैतुल नूर मॉडल टाउन गया, 6 बजे मालूम हुआ कि मुजफ्फर साहब शहीद हो गए हैं। वहां मुर्दा खाने में उनकी लाश मिली, 5 गोलियां इनको लगी हुई थी। जख्मी होने की हालत में उनको देखने वाले जो उनके करीबी थे, उन्होंने बताया कि खुद भी दुरूद पढ़ रहे थे और दूसरों को भी यही तलकीन करते थे कि दुरूद पढ़ो और इस्तग़फ़ार करो। इनकी अहलिया बयान करती हैं कि मुजफ्फर साहब बचपन से ही नमाज तहज्जुद अदा करने के आदी थे, कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, बच्चों को भी यही तलकीन करते थे, ऊंची आवाज में तलावत करते थे, बल्कि 5 वक्त नमाज के बाद तलावत किया करते थे। कुछ दिन कपल रोजे भी रखे, थोड़े थोड़े दिनों में रोजे रखते रहते थे। हर एक को यही कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अंजाम बखैर हो। सब जिम्मेदारियां पूरी करते थे घर की, ना झूठ बोला कभी, ना झूठ बर्दाश्त करते थे। اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، اور جس چیز کے لیے دعا کے لیے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انجام بھی اپنے فضل سے قابل رشک کیا ان کا. ان کی ہمشیرہ قادیان میں ہے جو مدرسہ والا کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ داماد سے دوستوں کی طرح تعلق تھا، بہنوں سے بھی بڑا اس میں سلوک کرتے تھے. بڑی بیٹی نے بتایا کہ میرے ماموں ان کی ایک بیٹی وہاں لاکڈاؤن میں آئی ہوئی ہیں، کہ اس کے گھر گئے تو دو مرتبہ ایسا ہوا کہ ایم ٹی اے پر خلافت جوبلی والا دہرایا جا رہا تھا تو کھڑے ہو کر بلند آواز سے اس صحت کو دہرانے لگے، جس طرح کمرے میں اور کوئی موجود نہیں ہے اور صرف انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ دہرائے. 1980 میں ان کو حج کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. مکرم میاں مبشر احمد صاحب شہید ابن مکرم میاں برکت علی صاحب، شہید مرحوم کے والد میاں برکت علی صاحب نے 1928 میں بیعت کی تھی اور پھر تحریک جدید کے 5000 مجاہدین میں شامل ہوئے. شہید مرحوم حضرت میاں نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، کھاریاں ضلع گجرات کے رہنے والے تھے، پھر یہ لاہور شفٹ ہو گئے 2008 میں، پہلے وزیر آباد رہتے تھے یہ لوگ. ان کا کوکا کولا میں ان کا ڈسٹریبیوشن کا کاروبار تھا، 1974 میں کاروبار ختم ہو گیا، لوگوں نے تمام سامان لوٹ لیا، شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ان حالات میں ایک دفعہ جماعتی ڈاک مرکز دے کر روا سے واپس وزیر آباد جا رہے تھے تو چنور پہنچنے پر ان کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش کی گئی کہ مرزائی ہے اسے مارو، لیکن بہرحال ڈرائیور گاڑی چلا دی اور وہاں تو کچھ نہیں ہوا. پھر گجران والا پہنچنے پر بھی جلوس نے آپ پر حملہ کیا اور بہرحال کسی طرح بچتے بچاتے اپنے گھر رات کو آدھی رات کو پہنچے. ان دنوں میں حالات جو تھے بڑے خوفناک حالات تھے، اور مرکز سے رابطے کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ بڑی قربانی دے کر آتے تھے. بہرحال قربانیوں کے لیے تو ہر دم تیار تھے یہ. اور پھر دوبارہ انہوں نے 1998 میں ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا، کوکا کولا کے ڈسٹریبیوٹر بنے. جب بوتلوں میں کام کرتے تھے تو کئی پارٹیاں آ کر یہ لالچ دیتی تھیں کہ آپ کی ایمانداری کا کی شہرت بہت ہے کہ آپ کی کوئی بوتل جعلی نہیں ہوتی، جو آپ تقسیم کرتے ہیں بالکل خالص چیز ہوتی ہے. پاکستان میں تو جعلی بوتلوں یا کسی بھی چیز کا جعلی کاروبار بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. تو ان کو مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ کی شہرت تو ہے ہی، آپ اپنے جو کریٹ بیچتے ہیں ان میں دو جعلی بوتلیں ڈال دیا کریں، اس سے آپ کا منافع جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گا اور کروڑ پتی ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کبھی ان کی بات نہیں مانی اور نہ کبھی ایسا سوچا. ان لوگوں کی جو مشورہ دینے آتے تھے بڑی مہمان نوازی کرتے تھے اور اس کے بعد بڑے آرام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں. 6 سال امیر جماعت تحصیل وزیر آباد بھی رہے. آپ کے بیٹے قمر احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں جو آج کل بینین میں ہیں، 65 سال شہادت کے وقت ان کی عمر تھی، وصیت کی ہوئی تھی اور آپ کی بھی شہادت دار الذکر مسجد میں ہوئی. جب حملہ ہوا ہے تو اپنی جگہ پر لیٹے رہے اور حملہ کے بعد محراب کے پاس گرنیڈ گرا تو زخمی ہو گئے، گردن کے بائیں طرف کا حصہ گرنیڈ پھٹنے سے اڑ گیا اور کافی بلیڈنگ ہوئی. اور بھانجے کو فون کیا کہ بیٹا میں بہت زخمی ہو گیا ہوں، 5-6 گولیاں میرے جسم میں بھی لگی ہیں. انتہائی نرم دل، غریب پرور اور توکل کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے، دعاگو انسان تھے، کسی کی تکلیف کا پتہ چلتا تو فوری دعا شروع کر دیتے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میری رفاقت ان سے 39 سال رہی، کبھی انہوں نے مجھے اف نہیں کہا اور نہ ہی بچوں کو کچھ کہا. میں اگر کچھ کہتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ دعا کیا کرو. میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. بچوں سے بہت محبت تھی، گھر میں کسی قسم کی غیبت کو ناپسند کرتے اور منع کر دیتے، اور کوئی بات شروع کرتا تو فوراً روک دیتے. गुजरांवाला में किराए के मकान में रहते थे तो वहां की मालकन जो गैरहमदी थी वो शहीद मरहूम के बारे में कहती थी कि मेरी ये सादत है कि मियां बशीर साहब मेरे किरायादार हैं और मैं ये दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी इन जैसा इंसान बनाए और भाई जान आप ही मेरे बच्चों की तबीयत करें। कारोबार में अपने जो काम करने वाले थे मुलाजमीन उनको खाने वाने का बड़ा ख्याल रखते थे, जब खाने का वक्त आता था तो लीग भी करते रहते थे। अक्सर ये फिक्रा अलिया कहती हैं कि कहा करते थे कि मैं तो नालायक इंसान हूं, अल्लाह ताला मुझे 33 नंबर दे के पास कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से 100% नंबर दे के शहादत का रुतबा दे दिया। फिदा हुसैन साहेब शहीद, इब्न मुकर्रम बहादुर खान साहेब, इनका ताल्लुक खारियां जिला गुजरात से है, वहीं पैदा हुए। करीबन 4 साल की उम्र में ही वालदैन एक माह के वक्फे से वफात पा गए। ये भी मियां बशीर अहमद साहब, जिनका पहले जिक्र आया, उनके कजन थे और वालदैन की बचपन में वफात की वजह से ये मियां बशीर अहमद साहब के जेर कफालती रहे, गैर शादीशुदा थे। इनकी उम्र शहादत के वक्त 69 साल थी और इन्होंने दारुल ज़िक्र में शहादत का रुतबा हासिल किया। जुमा के रोज मस्जिद के सहन में मजदूरी के पेश नजर थोड़े से माजूर थे, कुर्सियों पर बैठते थे, लेकिन सानिया के रोज अंदर हॉल में कुर्सी पर बैठे हुए थे कि दहशतगर्द ने जब उछाड़ की गोलियों की तो आपको 35 के करीब गोलियां लगी और मौके पर शहीद हो गए। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। खावर अयूब साहब शहीद, इब्न मुकर्रम मोहम्मद अयूब खान साहेब शहीद मरहूम का खानदान गिलगित का रहने वाला था, तहम इनकी पैदाइश भेरा जिला सरगोधा में हुई। 10वीं तक तालीम हासिल करने के बाद लाहौर आ गए। 1978 में वापडा मुलाजमत शुरू कर दी। इस वक्त अकाउंट और बजट ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे। 1984 में बैत करके अहमदियत में शमूलियत अख्तियार की। शहादत के वक्त इनकी उम्र 50 साल थी। अल्लाह ताला के फजल से मूसी थे, सेक्रेटरी वक्फे नौ और मुहासिब की हैसियत से खिदमत बजा ला रहे थे। साबिक कायद मजलिस अंसारुल्लाह भी थे। दारुल ज़िक्र में इनकी शहादत हुई। एक अरसे से दारुल ज़िक्र में नमाज जुमा अदा किया करते थे। सहाने के रोज भी मुलाजमत से जुमा पढ़ने गए और मेन हाल में बैठे थे। 2 गोलियां लगी, एक दिल के करीब और दूसरी घुटने में। करीबन 2:15 बजे घर फोन किया कि दहशतगर्द आ गए हैं, इनके पास असला है और आप दुआ करें। फिर अलिया रब्ता करती रही। तीसरी दफा रब्ता हुआ तो यही कहा कि बस सब दुआ करो, उसके बाद फिर शहीद हो गए। अहलिया कहती हैं बड़े अच्छे इंसान थे, बाजमात नमाज अदा करते थे, लोगों ने भी मतलब यही आए दी है कि बड़े अच्छे इंसान थे और बड़ी इंतजामी सलाहियत थी आपने, बच्चों की तरबियत भी खूब अच्छी तरह की, हकूक लिबाद अदा करने वाले भी थे, खिलाफत के वफादार और शदाई थे। खावर अयूब साहब के बारे में अलियाज खान साहब ने लिखा है कि 1980 में खावर अयूब साहब को बीए के बाद वापडा में मुलाजमत मिल गई और ये अजीजदारी की बुनियाद पर भेरा जिला सरगोधा से हमारे घर रहमानपुरा आ गए। हमारा घर का मेहंदी माहौल था, हमारी तरबियत अलियाज खान साहब कहते हैं एमडी तालीमात के मुताबिक थी, तो खावर अयूब साहब भी हमारे माहौल का हिस्सा बन चुके थे मगर एमडी नहीं हुए थे। अलबत्ता एमडी की तालीम सुन के रवायती एतराजात जो मौलवी करते हैं वो करते रहते थे, यहां तक कि हम इनको छेड़ा करते थे कि सवाल करो, क्योंकि शहीद मरहूम बहुत सवाल किया करते थे। एक रोज एक हमारे मुबल्लिग सिलसिला बरकतुल्ला साहब मरहूम ने मजलिस से सवाल जवाब का इनेकाद किया और सवाल की कसरत की वजह से खावर साहब मशहूर थे, इसलिए रब्बी साहब ने शहीद मरहूम को मुखातिब करके फरमाया खावर साहब सवाल करें, तो उन्होंने कहा मेरा कोई सवाल नहीं है और फिर कुछ अरसे बाद बैत कर ली। लेकिन हम इनके अजीज कहते हैं कि हम उनको कहते थे भी सोच लो, तो उन्होंने हमारा ये कहकर मुंह बंद करा दिया कि अगर तुम मेरी बैत नहीं करवाओगे तो मैं हजूर को लिखूंगा ये मेरी बैत नहीं करवाते। और फिर बैत करने के बाद नेकी और रूहानियत में लग से बड़ी तरक्की की। مکرم شیخ محمد یونس صاحب شہید ابن مکرم شیخ جمیل احمد صاحب. شیخ یونس صاحب مرحوم 1947 میں امروہا انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، 1950 میں قادیان اور پھر 1955 میں روا آ گئے. ان کے والد شیخ جمیل احمد صاحب حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے اور درویشان قادیان میں سے تھے. شہید مرحوم نے میٹرک روا سے کیا، اس کے بعد صدر انجمن احمدیہ میں کارکن رہے، 2007 میں ریٹائرمنٹ ہو گئی. پھر یہ اپنے بیٹے کے پاس لاہور چلے گئے اور بطور سیکٹری اصلاح ارشاد اور دعوت اللہ خدمت سر انجام دے رہے تھے. 63 سال ان کی عمر تھی. بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہادت ہوئی. اللہ کے فضل سے موسی تھے اور اپنی معمول کا یہی تھا کہ جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے تھے اور اس روز بھی جمعہ کے دن کے لیے مسجد بیت النور میں 11 بجے پہنچ گئے اور پہلی صف میں بیٹھے تھے. بیٹا بھی ساتھ تھا جو کہ دوسرے ہال میں تھا. پہلی صف میں سب سے پہلے زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھے گئے. ان کے سر اور سینے میں گولیاں لگی تھیں. گرنیڈ پھٹنے کی وجہ سے پسلیاں بھی زخمی ہو گئی تھیں. اس کی وجہ سے شہادت ہوئی. شیخ صاحب نے ایک خواب میں دیکھا کہ ربا میں ایک بہت خوبصورت سڑک ہے جہاں خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پر خلفاء تشریف فرما ہیں اور سب سے اونچی کرسی پر حضرت مسیح علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور کہتے ہیں میں بھی ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں، یعنی شیخ صاحب. اہل خانہ نے بتایا کہ خلافت کے شہدائی تھے، 5 وقتہ نماز کے پابند، دل کے مریض ہونے کے باوجود شدید گرمیوں اور سردیوں میں نمازیں مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے. کسی شکرانے کے موقع پر جب الحمدللہ کے ادا کرتے تو ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. خدا پر توکل بہت زیادہ تھا. کہتے تھے بظاہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تہجد گزار تھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، جو بھی معمولی آمدنی تھی اس سے دوسروں کا بھی خیال رکھتے تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے. مختلف علمی مقالہ جات لکھے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی. دعوت اللہ میں مستعد تھے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ڈاور کے قریب ایک گاؤں میں ہم دونوں میاں بیوی مختلف اوقات میں قریباً 6-7 سال تک دعوت اللہ کرتے رہے، قرآن مجید کی کلاسیں لیتے رہے. پھر مخالفت شروع ہوئی تو کام روکنا پڑا. ربا کے قریب ایک گاؤں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل بھی عطا فرمائے. مکرم مسعود احمد بھٹی صاحب شہید ابن مکرم احمد دین صاحب بھٹی. شہید مرحوم کے آباء اجداد کھیرپور ضلع قصور کے رہنے والے تھے. ان کے دادا مکرم جمال دین صاحب نے 1911-12 میں بیعت کی تھی. 1975 میں یہ خاندان لاہور شفٹ ہو گیا. اپنے والد کے ساتھ یہ ٹھیکے داری کا کام کرتے تھے. میٹرک تک تعلیم حاصل کی. خدا بلحم دیا کہ بہت دلیر اور ضرورت مند رکن تھے. دوسرے دو بھائی بھی کاروبار میں شریک تھے. ان کے ایک بھائی مکرم محمد احمد صاحب صدر جماعت ہڈیارہ ضلع لاہور ہیں. دار الذکر میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کی عمر 33 سال تھی. مسجد دار الذکر میں نماز جمعہ سے قدر سنتیں ادا کر رہے تھے کہ شیلنگ شروع ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد اپنی بنیان اتار کر ایک لڑکے کے زخموں کو باندھا، ایک زخمی کا ساتھ ان کے، اور اس کو تسلی دی. اور اس کے بعد انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو پکڑ کر گرانے اور قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. اسی دوران دہشت گرد نے دوسرے نے گولیوں کی بچھاڑ کی اور ان کو شہید کر دیا. مکرم حاجی محمد اکرم ویرک صاحب شہید ابن مکرم چودھری اللہ تعالیٰ ورک صاحب. شہید مرحوم کے آباء اجداد قاضی مرال ضلع شیخوپورہ کے رہنے والے تھے. ان کے آباء اجداد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کی تھی. بعد میں خاندان علی پور قصور میں شفٹ ہو گئے جہاں شہید مرحوم کی پیدائش ہوئی. میٹرک تک ان کی تعلیم تھی اور 50 کی دہائی میں خاندان لاہور شفٹ ہو گیا. محکمہ اوقاف میں ملازم تھے، 1966 میں ریٹائر ہو گئے، اپنے حلقے کے زعیم انصار اللہ کافی عرصہ رہے، سیکرٹری تعلیم اور نائب صدر حلقہ تھے اس وقت موجود، اور عمر ان کی 76 سال تھی. ان کی شہادت بھی دارُ ذکر میں ہوئی ہے. چوتھی صف میں مسجد میں بیٹھے تھے جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے. ان کے والد صاحب نے اپنا پتو کی والا بھائی گھر جماعت کو تحفتاً پیش کر دیا تھا جو آج کل مربی ہاؤس ہے. ان کے والد صاحب پتو کی جماعت کافی عرصہ صدر رہے ہیں. اہل خانہ نے بتایا کہ بہت محنتی تھے، بزرگ ہونے کے باوجود اہل خانہ اور دیگر چھوٹے بچوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑے صاف ہوا انسان تھے. مکرم میاں لئی کے احمد صاحب شہید، ابن مکرم میاں شفیق احمد صاحب شہید. مرحوم کے ابا و اجداد امبالے کے رہنے والے تھے. پردادا مکرم بابو عبد الرحمان صاحب امبالے کے امیر رہے. پارٹیشن کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا. یہ شہید مرحوم امبالے میں پیدا ہوئے، بنیادی تعلیم لاہور سے حاصل کی. 66 سال ان کی عمر تھی شہادت کے وقت. سیکرٹری اشاعت حلقہ کنال پارک ان کو خدمت کی توفیق مل رہی تھی. مسجد دار الذکر میں ان کی شہادت ہوئی. مسجد کے مین ہال کی تیسری صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے. ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں خالق کے حقیقی سے جان ملے. ان کی بلیڈنگ اتنی ہو گئی تھی کہ 3 گھنٹے تک تو وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا. شہید مرحوم الیکٹریشین تھے پیشے کے لحاظ سے، نہایت سیدھے سادے اور خاموش طبیعت کے مالک تھے. کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی. تہجد گزار تھے. گھر میں بچوں سے دوستانہ ماحول تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مرزا شابل منیر صاحب شہید، ابن مکرم مرزا محمد منیر صاحب شہید. مرحوم کے پردادا حضرت احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جبکہ شہید مرحوم کے والد مکرم مرزا محمد منیر صاحب کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا بزنس تھا. شہید مرحوم بی کام کے بعد بی بی اے کر رہے تھے اور شہادت کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی. خدام الحمدیہ کے بڑے سرگرم رکن تھے، ہر آواز پر لبیک کہا اور دار الذکر میں جامع شہادت نوش کیا. شہید مرحوم اپنے چھوٹے بھائی شہزاد منیر صاحب کے ہمراہ مین ہال میں محراب کے سامنے سنتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی. پہلا حملہ محراب پر ہوا. اس موقع پر شہید مرحوم پہلے ہال سے باہر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اندر واپس آئے اور دروازے کے پاس بیٹھ گئے، اور دوسرا بھائی بھی پاس آ گیا. گھر فون پر بات کی اور دوستوں سے بھی بات کی. اتنے میں مینار کی طرف سے ایک دروازے سے ایک دہشت گرد اندر داخل ہوا اور فائرنگ کر دی، جس سے کافی لوگ شہید ہو گئے. شہید مرحوم اس وقت گولی لگنے سے شدید زخمی تھے. تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے آواز دی لیکن خاموش رہے. میں نے دیکھا کہ ٹانگ سے کافی خون بہ رہا ہے اور مجھے کہا کہ میری ٹانگ سیدھی کرو. میں نے اپنی قمیض اتار کر پٹی باندھنے کی کوشش کی لیکن نہیں باندھ سکا، کیونکہ کہتا تھا جہاں میں ہاتھ لگاتا تھا وہیں سے گوشت لٹک جاتا تھا. قریب 1/2 گھنٹہ اسی کیفیت میں رہے، اور تھوڑی دیر اسی عرصے میں پھر شہادت کا رتبہ پایا. اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا تھا، بڑی ہمت دکھائی انہوں نے. ایسی حالت میں کوئی چیخو پکار نہیں تھی، بلکہ آنکھوں سے لگ رہا تھا خوش ہے کہ چلو میرا بھائی تو بچ گیا اور بالکل سلامت بیٹھا ہے. آپ کے ایک دوست نے لکھا کارکن نے، پھر ایک حزب کے سائق تھے خدام الحمدیہ میں، کچھ ماہ سے نہایت جذبے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ خاکسار رات 11:30 بجے ان کے گھر گیا کہ حقیقت الوحی کے پرچے پر کروانے تھے. وہ اسی وقت موٹر سائیکل لے کر نکل کھڑے ہوئے اور گھروں کا دورہ کیا. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس گاڑی ہوتی تو مجلس کے کاموں کے لیے پیش کرتے. غرض نہایت شریف سادہ اور کبھی نہ نہ کرنے والے وجود تھے. ان کے एक दोस्त ने लिखा कि मुझे ख्वाब में शाबिल मुनीर मिलता है, मिला उसने कहा और मैं कहता हूं उसे कि तुम किधर हो, तो मुझे जवाब देता है, शहादत के बाद का जिक्र है, कि भाई मैं तो इधर हूं तुम किधर हो। फिर वो साथ ही मुझे कहता है कि भाई मैं इधर बहुत खुश हूं, तुम भी आ जाओ, मुझे खुद भी वो खुश महसूस होता है। फिर ये मंजर खत्म हो जाता है। तो ये और बहरहाल अल्लाह ताला इस नौजवान के कुछ दर्जा बुलंद फरमाए। ये वो नौजवान हैं, ये नौजवान लोग जो अपने पीछे रहने वाले नौजवानों को अपना अहद पूरा करने की याद दिलाते हैं अल्लाह ताला की राह में कि हम तो कुर्बान हो गए, तुम अपने अहद से पीछे न हटना। मुकर्रम मलक मकसूद अहमद साहब शहीद, इब्न मुकर्रम एस ए महमूद साहेब शहीद, मरहूम के दादा बटाले के रहने वाले थे, जबकि इनके वालिद साहेब मुकर्रम एस ए महमूद सदर पाकिस्तान अयूब खान के मशीर भी रहे। इसी तरह इनके नाना हजरत मलक अली बख्श साहेब रज़ी अल्लाह अन्हो मुस्लिम अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और रियासत भोपाल के रहने वाले थे। इनकी वालदा मोहतरमा के सर पर भी हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपना शफकत भरा हाथ फेरा था बचपन में। शहीद मरहूम के नाना दादा और वालदा मोहतरमा सहाबी थे। शहीद मरहूम की पैदाइश भोपाल में हुई। नानी मोहतरमा मुख्तार बेगम साहिबा के पास इन्होंने कादियान में परवरिश पाई। तालीम इस्लाम कॉलेज में जेर तालीम रहे। एफए के इम्तिहान से कबल वापस भोपाल चले गए। फिर ये लाहौर फैमिली आगे सेटल हो गई। शहादत के वक्त इनकी उम्र 80 साल थी। अल्लाह ताला के फौज मौसी थे और अपने हल्के में बतौर सेक्रेटरी तालीम कुरान अमीन और ऑडिटर खिदमत की तौफीक पा रहे थे। शहीद मरहूम अल ताहिर साहेब कामकाम अमीर जिला के जिला लाहौर के बनवाई थे। दारुल जिक्र में इनकी शहादत हुई। शहीद मरहूम के नवासे ने बताया कि वो मस्जिद के मेन हॉल में दूसरी सफ में बैठे थे। फायरिंग के वक्त मुरब्बी साहब की हिदायत पर अमल करते हुए सहन की तरफ बाहर निकले तो देखा कि शहीद मरहूम कानों में उंगलियां डालकर लेटे हुए थे। ये नवासा जो बाहर निकला था, लेकिन मुझे इनके अंदर कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। शायद उसे शहीद हो चुके थे क्योंकि काफी गोलियां लगी हुई थी। शहीद मरहूम के अहले खाना ने बताया कि 5 वक्त नमाज और तहज्जुद के पाबंद थे, बाकायदगी से चंदे अदा करते थे, तबलीग का बहुत शौक था, जमाती कुतुब का मुतालिया और खुतबात जो थे खलीफा वक्त के बहुत बाकायदगी से सुनते थे, एमटीए के दीगर प्रोग्राम भी दिलचस्पी से देखते थे और सुनते थे, अकाउंट्स के माहिर थे। एक मरतबा बताया कि कादियान में मुकाबला हुआ बचपन में, जब बच्चे थे ये, कि कौन सबसे पहले मस्जिद आएगा, तो देखा कि आप सुबह 2:30 बजे मस्जिद पहुंचे हुए थे, हालांकि सुबह छोटी उम्र थी आपकी। इनके एक बेटे तो बसम मकसूद साहेब ने वकील हैं, अन वक्त जिंदगी वक्त की है और आजकल दरबार में काम कर रहे हैं। मुकर्रम चौधरी मोहम्मद अहमद साहब शहीद, इब्न मुकर्रम डॉक्टर नूर अहमद साहेब शहीद, मरहूम के वालिद साहेब और दादा मुकर्रम चौधरी फजलदास साहेब ने 1921-22 में वैद करके जमात में शमूलियत अख्तियार की। अबाई तालीम खीवा जिला फैसलाबाद से था। शहीद मरहूम के वालिद साहेब हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहेब के साथ जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम करते रहे। इनके वालिद साहब ने शुदी तारीख के दौरान 1 साल से ज्यादा अरसा का वक्त किया था। 1928 में खीवा में शहीद मरहूम पैदा हुए। फैसलाबाद से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वारंट अफसर के तौर पर काम करते रहे। फिर दौरान सर्विस 63 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। 63 की जंग के दौरान एक मौके पर जब तैयारे का बम लोडर खराब हो गया तो साथियों को हिम्मत दिलाकर बम कंधों पर लादकर खुद लोड किया करते थे। आज ये नाम नहाद मुल्क के हमदर्द एमडीए पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मुल्क के हमदर्द नहीं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर भी कुर्बानियां देने के लिए, दीन और देने के लिए हर वक्त तैयार रहे। हुकूमत की तरफ से गैर ममालिक के दौरे भी ट्रेनिंग के लिए जाते रहे। 1971 में रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट के बाद सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल स्क्वाड के हेड के तौर पर 1988 तक काम करते रहे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 85 साल थी। अल्लाह के फौज से मूसी थे। मॉडल टाउन की मस्जिद में इनकी शहादत हुई। वहीं ये जुमा अदा किया करते थे अक्सर। जुमेरात को भी बड़ा अहतमाम किया करते थे, जुमे की तैयारी का। जुमेरात को कपड़े इस्त्री करवा कर लटकवा देते थे और 12 बजे मस्जिद चले जाते थे। हॉल के अंदर बाईं तरफ कुर्सियों पर बैठते थे। अमूमन बकुआ के रोज एक नौजवान ने इनको दूसरी और तीसरी सफ के दरमियान खून में लगकर देखा। उन्होंने इस नौजवान को आवाज दी और कहा कि मुझे गोलियां लगी हैं, मेरे पेट पर कपड़ा बांध दो। इसके बाद उन्होंने दीगर जख्मियों को पानी पिलाने की हिदायत की। जख्मी थे, उसके बाद उन्होंने कहा जख्मियों को, उस नौजवान को कहा कि उन्हें पानी पिलाओ। साथ साथ दीगर अहबाब को बचाव की हिदायत देते रहे क्योंकि ये शोबे के माहिर थे। एक गोली इनकी हथेली पर भी लगी हुई थी। जख्मी हालत में इनको जिना अस्पताल में ले जाया गया जहां रात 8 बजे के करीब इनकी शहादत हुई। शहीद की फैमिली में एक खातून ने 2 दिन कबल ख्वाब में देखा कि लाहौर में फायरिंग हो रही है। इस तरह की फायरिंग ख्वाबें अक्सर एनजीओ को पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्कों में भी आई हैं, जो इस वाकये की निशानदेही करती थी। किसी से बोझ नहीं रखते थे, सेहत अच्छी थी और बच्चों के साथ बहुत प्यार का ताल्लुक था। नमाज बाजमात के शौकीन, कुरान करीम की तिलावत, कबड्डी और फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे। खिलाफत से इश्क था। इनके बारे में इनकी बेटी ने लिखा है, वो यानी शायद के हवाले से, कि अब्बा जी हाल में कुर्सियों पर बैठे थे जहां मुरब्बी साहब खुतबा दे रहे थे। खुतबा भी शुरू हुआ ही था कि बाहर से गोलियों की आवाजें आईं और फिर ये आवाजें लम्हा बलम्हा करीब होती गईं। इस दौरान मुरब्बी साहब ने लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की हिदायत देते रहे और कहा कि खुतबा जारी रहेगा। कहती हैं कि मेरे अब्बा जी के साथ चौधरी वसीम अहमद साहब सदर किनाल भी हुए और उनके बुजुर्ग वालिद बैठे थे। वो अपनी उम्र रसीदा वालिद को तकरीबन घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले गए वसीम साहब, और मेरे वालिद साहब से भी कहा कि बुजुर्गों उठो, लेकिन आप ना उठे। बकौल वसीम साहब के, वो ऐसे बैठे थे जैसे इनका अंदर का फौजी जाग गया हो और वो हालात का बगौर मुताला कर रहे हों। चंद और लोगों ने भी कहा, इसी भेड़ चालने में हमने इनसे कहा कि उठ जाएं, लेकिन वो नहीं उठे। इसी तरह इसने दहशतगर्द ने गोलियों को रोक कुर्सियों की तरफ कर दिया और फायरिंग करता हुआ अब्बा जी के नजदीक जाता गया। बकौल कर्नल बशीर अहमद बाजवा साहेब जो कुर्सियों के पीछे थे, उन पर भी फायर हुआ लेकिन वो बच गए। वो कहते हैं कि इन्होंने इस दौरान ये जख्मी हो चुके थे। ये वो दहशतगर्द समझा कि मेरा काम खत्म हो गया। वो फारिग होकर मुड़ा और शायद अपनी गन लोड करने लगा। तो इसी दौरान कहती हैं कि कर्नल साहब ने बताया कि मेरे अब्बा जी ने जख्मी होने के बावजूद मौका पर नहीं मच जाना और पीछे से एकदम छलांग लगाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। यकीनन ये एक ऐसी ताकत थी जो इनकी मदद कर रही थी, कोई पीछे की खास ताकत। कर्नल बशीर ने जो कुर्सियों के पीछे थे उन्होंने फौरन छलांग लगाई और दहशतगर्द को काबू करने लगे। वसीम साहब का बयान है कि हम सीढ़ियों से चंद स्टेप ही नीचे थे और देख रहे थे। जब देखा कि दहशतगर्द काबू में आ रहा है तो खुदाम भी दूसरे भी मदद के लिए आ गए इस दौरान में, और इस हाथापाई के दौरान इनके बकौल के इस दौरान में उनको गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उससे पहले भी लग चुकी थी। और एक हथेली से भी पार हुई, दूसरी बाजू में कलाई के पास लगी और तीसरी पसली में पेट के एक तरफ। पहले कम जख्मी थे, वही हाथापाई में मजीद गोलियां भी लगी। बहरहाल इनकी इस इब्तदाई कोशिश के बाद कर्नल बशीर और बाकी सब नमाजी शामिल हुए और उस दहशतगर्द की जैकेट को डिफ्यूज कर दिया और उसके हाथ पांव बांध दिए। देखने वाले बताते हैं उनके इस हिस्से में भी गोलियां लगने के बावजूद आपका दिमाग सही काम कर रहा था और जैकेट को डिफ्यूज करने के बारे में भी वो राय देते थे क्योंकि उनका यही काम था, बम डिस्पोजल में काम करते रहे हैं। और मजीद देखने वाले कहते हैं कि हम उसको देख के इनकी हालत हमारी बुरी हालत हो रही थी लेकिन वो एक दफा भी उन्होंने हायर नहीं की और बड़े आराम से अपनी जान जाने आप इनकी सपोर्ट कर दी और शहादत का रुख कर पाया। अलियास अहमद असलम कुरैशी साहेब, शहीद इब्न करम मास्टर मोहम्मद शफी असलम साहेब, शहीद मरहूम के खानदान का ताल्लुक कादियान से था, फिर गुजरांवाला शिफ्ट हो गए। आपके वालिद मोहतरम मुबल्लिग सिलसिला थे, तहरीक शुद्दी के दौरान नुमाया खिदमात अंजाम दी। इनके भाई मोहम्मद असलम अहमद असलम साहेब 313 दरवेशानी कादियान में से थे, ग्रेजुएशन के बाद नेशनल बैंक ज्वाइन किया और एबीपी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की वजह से रिटायर हुए। शहादत के वक्त की उम्र 76 साल थी, उसी वक्त के निजाम में शामिल थे लगभग से और सदर जमात जौहर टाउन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बैतुल नूर में इनकी शहादत हुई और पिछली सब में बैठे हुए थे, ये पिछले हाल में पहली सफ में बैठे थे। दीगर दो साथियों के साथ हॉल का दरवाजा बंद रखने की कोशिश के दौरान हमला आवरों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए और जख्मी हालत में कई घंटे पड़े रहे। शाम 4 बजे के करीब ये शहीद हुए। उनकी अहलिया कहती हैं कि बहुत सादा दिल, नेक और हर हाल में सब्र और शुक्र करने वाले और मुतवक्कल इंसान थे। दुआओं की तरफ खुसूसी तवज्जो थी, जमाती काम खुशी से सर अंजाम देते थे। आज वो बच्चे कहते हैं आप एक नहायत शकीक बाप और हमदर्द इंसान थे, नमाजों तजुद के पाबंद थे, कभी हमने उन्हें नमाज का वापस पढ़ते हुए नहीं देखा, अपनी औलाद को भी नमाज की तरफ तवज्जो दिलाते रहते, बड़े हकमुख हंसमुख बिलनिसार इंसान थे। 5 साल से हल्का जौहर टाउन के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। कभी भी कोई कारकुन या कोई जमाती काम के लिए खादिम या अंसार में से किसी भी वक्त आ जाता दोपहर को या रात को तो कभी बुरा नहीं मनाते थे और अपने बच्चों से भी कहते थे कि अगर कोई जमाती काम से घर आए तो बेशक मैं सो भी रहा हूं तो मुझे उठा दिया करो, और इसी पर हमेशा अमल किया उन्होंने। अक्सर नसीहत करते कि जमात और खिलाफत से वफा करना। मुकर्रम ताहिर महमूद अहमद साहेब, शहीद मुकर्रम सईद अहमद साहेब मरहूम, ये कोटा दू जिला मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले थे। 1953 में आपके वालिद साहब खानदान में पहले एमडी हुए, 1993 में लाहौर मुंतकिल हो गए। शहीद मरहूम ने कोटा दू से मैट्रिक किया, फिर एक प्राइवेट मुलाजमत अख्तियार कर ली, फिर मलेशिया चले गए। थोड़े से जमीन तौर पर पसमानदा भी थे। शहादत के वक्त की उम्र 53 साल थी, मस्जिद बैतुल नूर मॉडल टाउन में उनकी शहादत थी और जुमा पर आने से कबल हल्के के सदर साहब के घर गए तो सदर साहब ने वैसे मजाकन कह दिया कि चलो मैं तुम्हें जुमा पढ़ाकर लाता हूं। इस तरह सदर साहब के साथ पहली दफा मस्जिद बैतुल नूर गए थे, वरना अक्सर ठोकर न्याज बेग सेंटर या कभी कभी दरवाजे पर जाकर नमाज जुमा अदा करते थे और वहीं इनकी शहादत हुई। फिर रात शाम 7 बजे इनकी शहादत का इलम हुआ। छाती में 2 गोलियां और माथे पर 1 गोली लगी हुई थी। बड़े दबंगे अहमदी थे, जिंदगी में भी कहते थे कि मैं गोलियों से नहीं डरता, मैंने शहीद ही मनाया। सारे इलाके में वाकफियत थी, मुखलिस और जज्बाती अहमदी थे। और हर रात चलते को अस्सलाम वालेकुम कहा करते थे। सैयद इरशाद अली साहब शहीद इब्न कौम सैयद समीउल्लाह साहेब शहीद मरहूम कूचा मीर हसामुद्दीन सियालकोट के रहने वाले थे, इनके दादा हज़रत सैयद खसरत अली शाह साहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और नाना हज़रत सैयद मीर हामिद शाह साहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सियालकोटी सहाबी थे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रफ़क़ाए खास में शामिल थे। सियालकोट में क़याम के दौरान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इनके घर क़याम किया। इनके वालिद साहब जामिया अहमदिया चिमोट और रोहबा के प्रिंसिपल रह चुके हैं, उन्होंने अपना घर जमात को वक्फ कर दिया था। शहीद मरहूम बीए के बाद मुकाबले का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए और डिप्टी डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट की हैसियत से रिटायर हुए। गार्डन टाउन में इस वक्त सेक्ट्री माल के फराइज अंजाम दे रहे थे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 80 साल थी। मस्जिद वतन मूवमेंट की शहादत हुई। इनके घर वाले कहते हैं कि नमाज जुमा की अदायगी ली जाने से कबल घर में सीने पर हाथ बांधे लेटे हुए थे और कह रहे थे कि आज सुकून करने का दिल चाह रहा है, जाने को जी नहीं चाह रहा। फिर उठकर नमाज जुमा की दाई गली चले गए थोड़ी देर बाद और जाते हुए आवाज दी कि मैं जा रहा हूं। फिर दूसरी दफा कहा कि मैं जा ही रहा हूं। दामाद के साथ बैतनूर में बाहर सहन में बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। शुरू के हमले में कुर्सियों पर बैठने वालों को फौरी तौर पर हाल के अंदर भिजवा दिया गया जहां इनकी शहादत हुई। जिसम पर 3 गोलियां लगी हुई थी। इनके अहले खाना ने बताया कि काफी साल कबल शहीद मरहूम ने बताया कि इनको आवाज आई कि इन्हीं राफियों का व मुतवफी का, शायद उल्टा सुनने वाले ने बयान करते बयान करने वाले ने लिख दिया हो, हो सकता है इन्हीं मुतवफी का हो राफियों का हो। बहरहाल जो भी है तो कहते हैं मुझे आवाज आई लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसका क्या मतलब है। शहादत से 15-20 दिन पहले कहते हैं मुझे आवाज आई कि वी रिसीव यू विद ओपन आर्म्स विद रेड कार्पेट। शहीद मरहूम ने शहादत से चंद दिन कबल ख्वाब में एक घर देखा जिसमें खूबसूरत बग्घी आकर रुकी और आवाज आई है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं। अपने गुज़श्ता 1.5-2 माह से कहा करते थे कि मैं अपने आबा व अजदाद की तरह दीन की खिदमत नहीं कर सका, उसे बड़े परेशान थे। हकूकुलबाद की अदायगी बेखास वस्ता सिला रहमी करने वाले थे और बड़े जिंदा दिल आदमी थे। मुकर्रम नूरुल अमीन साहेब शहीद इब्न मुकर्रम नजीब नसीम साहेब शहीद मरहूम रावलपिंडी में पैदा हुए, वहीं से मैट्रिक किया, उसके बाद नेवी में बतौर फोटोग्राफर भर्ती हो गए। इनके दादा हज़रत पीर फैज साहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ऑफ अटक सहाबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे। जब उनके पुरनाना मुकर्रम बाबू अब्दुल गफ्फार साहेब जो अमीर ज़िला हैदराबाद रहे और खुदा की राह में शहीद हुए, मजलिस खुदाम अलहमदिया के बड़े जिम्मेदार और मेहनती रुकन थे। मनसूबे उन्हीं हल्का मॉडल टाउन को मुझसे अंजाम दे रहे थे। क्लोज सर्कल सिस्टम की मॉनिटरिंग करते रहे जो लगाया था मस्जिद में। कुछ अरसे के लिए कराची चले गए। शहादत के वक्त इनकी उम्र 39 साल थी और मस्जिद दारुज़िक्र में इनकी शहादत हुई। सानी के दौरान उनका अपने घर वालों को और दोस्तों को फोन आया कि मैं ऐसी जगह पर हूं कि अगर चाहूं तो निकल सकता हूं लेकिन मेरी यहां ड्यूटी है। यह दारुज़िक्र के सैन में पड़ा पड़ी डिशन टीना के पीछे बैठे हुए थे, वहीं ग्रेनेड लगने से शहीद हुए। शहीद मरहूम की अलिया बताती हैं कि वो इंतहा खुदमों के मालिक थे। जुमा को जब 2 बजे फोन किया तो उन्होंने कहा कि खैरियत से हूं। मैंने कहा कि आप वहां से निकल आए, तो उन्होंने कहा यहां बहुत लोग फंसे हुए हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं आ सकता। बच्चों की तबीयत के बारे में फिक्रमंद रहते थे, खासतौर पर वक्फे में बच्चों के बारे में, और जमाती ड्यूटियों में हमेशा पेशकश रहे। चौधरी मोहम्मद मालिक साहब चैदर शहीद इब्न मुकर्रम चौधरी फतेह मोहम्मद साहेब शहीद मरहूम के अबाउलदाद गखड़ मंडी के रहने वाले थे, वहां से गुजरने वाला और फिर लाहौर शिफ्ट हो गए। इनकी पैदाइश से कबल ही इनके वालिद साहब वफात पा गए थे। मैट्रिक में पढ़ते थे कि वालदा ने बाजू में पहनी सोने की चूड़ी उतारकर दे दी कि जाकर पढ़ो। मरे काले शहर को से बीए किया, जेल की नौकरी मिलती थी लेकिन नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारा करते रहे। इसी से बच्चों को तालीम दिलवाई। शहादत के वक्त इनकी उम्र 93 साल थी और मुसी भी थे। अब इस उम्र में जाना तो था लेकिन अल्लाह ने इनको अता फरमाया। मस्जिद बैतुल्लाह में इनकी शहादत हुई। अहले खाना बताते हैं कि उनको बुढ़ापे की वजह से भूलने की आदत थी, जिसकी वजह से तकरीबन 7-8 जुमे छोड़े और 28 मई को जुमे पर जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। उनकी बहू बताती हैं कि उनको कहा गया कि बाहर मौसम ठीक नहीं है, आंधी चल रही है, इसलिए आप जुमे पर न जाएं। बच्चों की भी यही ख्वाहिश थी कि जुमे पर न जाएं, लेकिन नमाज जुमे की दाई के लिए तैयार होकर घर से चले गए। अमूमन मस्जिद के सहन में किसी पर बैठकर नमाज जुमा अदा करते थे। हमेशा की तरह सामने के रोज भी सहन में किसी पर बैठे हुए थे और हमले के शुरू में ही गोलियां लगने से शहादत हो गई। बहुत अमन पसंद थे, कभी किसी से ज्यादती नहीं की। उस मसीह अलैहिस्सलाम की कुतुब बहुत शौक से पढ़ते थे और घर वालों को भी तलकीन करते थे। इनके साहबजादे दाऊद अनुसार बताते हैं कि जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स पास किया तो वालिद साहब से मुलाजमत की इजाजत चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी नौकरी कर लो। मैंने कहा वो क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम बाकायदा दफ्तर की तरह तैयार होकर सुबह 9 बजे आना, दरमियान में वक्फा भी होगा और शाम 5 बजे छुट्टी हो जाया करेगी, और यहां मेज पर बैठ जाओ और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ा करो, और जितनी तनख्वाह मिलने की तुम्हें उम्मीद है अपनी नौकरी से, उतनी तनख्वाह तुम्हें मैं दे दिया करूंगा। तो किताबें पढ़ाने के बाद उस नौकरी से फारग किया। फिर तो बचपन से लेकर शादी तक, बच्चों की इस तरह तरीर थी, बचपन से लेकर शादी तक अजान के वक्त सब बच्चों के दरवाजे खटखटाते और जब तक उन्हें उठा नहीं लेते थे नहीं छोड़ते थे, और फिर वजू करवा के घर में बाजुमात में नमाज अदा होती थी। बच्चों की तरबियत के लिए कभी भी नहीं मारा, और यही उनके लड़के कहते हैं मुझे ये फलसफा समझाते थे कि बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। इनकी हमदर्दी है, यही हमदर्दी है, और मारपीट से तरबियत नहीं होती। कहते हैं कि जब भी मेरी आंख खुलती मैंने रो रो कर उनको अपनी औलाद के लिए दुआएं करती देखा रात को। '74 में एक लड़के कहते हैं कि हम सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में थे, हालात खराब होने पर काफी हिंदी अखबार हमारे घर में जमा हो गए और 1.5-2 माह उनका कैंप हमारे घर के पास था। चुनाचे इन सब की बहुत खिदमत की, बहुत दयानतदार थे, झूठ तो मुंह से निकलता ही नहीं था, हमेशा सच बोला और सच का साथ दिया, और सारे खानदान की कहकर वसीयत करवाई। शेख साजिद नईम साहेब शहीद, इब्न करम शेख अमीर अहमद साहेब शहीद मरहूम के बाबा दाद का ताल्लुक भेरे से था। इन्होंने लाहौर से बीए किया, रावलपिंडी में एमसीबी बैंक में ग्रेड 3 के ऑफिसर भर्ती हुए और 2003 में बतौर मैनेजर रिटायरमेंट ली। बच्चे चूंकि लाहौर में थे इसलिए लाहौर आ गए। मुकरम शेख मोहम्मद यूसुफ कमर साहब अमीर जिला कसूर के बरादर नस्पति थे। शहीद मरहूम मिर्जा संसारुल्लाह के बहुत ही जिम्मेदार रुकन थे और बतौर नायब मुंसिम तालीम कुरान खिदमत की तौफीक पा रहे थे। बहुत के शहादत इनकी उम्र 59 साल थी। निजाम वसीयत में शामिल थे, शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, मिसल नंबर मिल चुका था। मस्जिद दौतनूर में इनकी शहादत हुई। नमाज जुमा के लिए वक्त से पहले ही घर से निकल जाते और नमाज बहुत संवार को पढ़ते। अमूमन अपनी जगह मस्जिद दौतनूर के दूसरे हॉल में उस दिन वहां बैठे हुए थे। दूसरे हॉल में फायरिंग शुरू होने के 5-15-20 मिनट के बाद अपने बेटे शहजाद ने उनको फोन किया कि तुम ठीक हो? वो ठीक था, बताया कि हम ठीक हैं। वो मस्जिद में ही था, दीगर साथियों के साथ हॉल के मेन दरवाजे को बंद किया और इसके आगे खड़े रहे क्योंकि इस दरवाजे की कुंडी सही तरह नहीं लग रही थी। इस वजह से हॉल में मौजूद अक्सर लोग बेसमेंट में जाने में कामयाब हो गए। दहशतगर्द के अंदर उन फायरिंग और बाद में ग्रेनेड के पट्टी की वजह से शहीद हो गए। एक बेटे की शादी और मुलाजमत की वजह से फिक्रमंद थे और उस दिन भी जुम्मे वाले दिन बेटे का इंटरव्यू दिलवाया, सवाल जवाब उससे पूछे कैसा हुआ। और खुश थे कि इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी, और अल्लाह के फजल से फिर बेटे को नौकरी लेकिन जून से मिल भी गई। बीवी बच्चों के हकूक का बहुत ख्याल रखते थे, ससुराली रिश्तों और दीगर रिश्तों के बारे का बहुत ख्याल रखते थे, नरम तबीयत के थे, इताअत गुजार थे, खिलाफत से इश्क था, बच्चों की हर किस्म की जरूरत का ख्याल रखते थे। मोहल्ले के उनके बेटे ने बताया कि मोहल्ले के गैर जमात दुकानदार ने सानिया के बाद इतवार को ख्वाब में देखा कि शेर साहब कह रहे हैं कि पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंचा हूं लेकिन बहुत खुश हूं और मजे में हूं। मुकरम सैयद लईक अहमद साहब शहीद इबन मुकरम सैयद मोहियुद्दीन अहमद साहेब शहीद के वालिद मोहतरम का ताल्लुक रांची जिला बिहार से था, भारत से बिहार भारत से था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी में एक एम डी स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिसने कहा कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं इनके वालिद के बारे को और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। तो शहीद के वालिद ने मोहियुद्दीन साहब ने गुस्से में इस एम डी स्टूडेंट का सर फाड़ दिया। बाद में शर्मिंदगी भी हुई, फिर कुछ किताबें पढ़ी तो मौली सनाउल्ला अमृतसरी से रब्ता किया, उसने गालियों से भरी हुई किताबें इनको भेज दी। ये देखकर इनको गुस्सा आया और कहा कि मैंने इनसे मसाइल पूछे हैं और ये गालियां सिखा रहे हैं। चुनाचे अहमदियत की तरफ मायल हुए और बैत करके अहमदियत में शामिल हो गए। ये मुल्ला की आदत जो हमेशा से है और आज तक भी यही कायम है। अब पूछने पर गालियों का लिटरेचर नहीं भेजते बल्कि टीवी पर बैठ के जमात के खिलाफ जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं और बड़ी दरीब दहनी करते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ। बहरहाल इससे लोगों को तवज्जो पैदा होती है, इसी तरह इनको तवज्जो पैदा हुई। शहीद तो पैदाइशी अहमदी थे, इनके वालिद वकील थे, फिर अंजुमन के मेंबर भी थे। रांची में उन्होंने मैट्रिक किया और मैट्रिक फर्स्ट ईयर में किया तो वालिद बहुत खुश हुए। फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया। पार्टीशन के बाद ये लाहौर आ गए और 1969 में एमसीबी ज्वाइन किया। 1997 में बैंक मैनेजर की हिस्से से रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एमसीबी बैंक में ही काम करते रहे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 72 साल थी और निजाम वसीयत में शामिल थे। मस्जिद में आते ही सुनते हैं बात की मोदी साहब से एक साथ पीछे बैठ गए और साथ बैठे बुजुर्ग मुकरम मुबारक साहब के माथे पर गोली लगी तो उनको तसल्ली देते रहे। इसी दौरान दहशतगर्दी गोलियों का निशाना बने और जख्मी हो गए। उठने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं सके। सामने से गोली नहीं लगी थी, अलबत्ता रीढ़ की हड्डी में गोली लगी और वहीं शहीद हो गए। बहुत तबीयत धीमी तबीयत के मालिक थे, लेकिन अगर कोई शख्स जमात या बुजुर्गाने सिलसिला के मुतालिक कोई बात करता तो उनको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। काम गो थे, लेकिन अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम या खुलफ़ाए सिलसिला का जिक्र छेड़ देता तो फिर घंटों उनसे बातें करते रहते थे। जमात से खामोश लेकिन गहरी वाबस्तगी थी और इश्क की हद तक प्यार था। सब बच्चों को तकलीफ के बावजूद पढ़ाया, बच्चे डॉक्टर बने, एक को आईटी में तलीम दिलवाई और एक को फ्रेंच में एमए करवाया बेटी को। सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल से अपने अपने अच्छे कामों में लगे हुए हैं। इनके बारे में अहले खाना लिखते हैं कि एक दफा जुमे की नमाज को खासतौर पर बड़ा ख्याल रखते थे। एक दफा यही वजह थी कि नमाज औलाद में किसकी मोहब्बत पैदा की। एक बार इनकी अहलिया बहुत बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा और जुमे का वक्त हो गया तो ये सीधे वहीं से मस्जिद में चले गए। ये ना सोचा कि वापस आऊंगा तो अहलिया जिंदा भी होगी कि नहीं, क्योंकि काफी शरीर बीमार थी। मोहम्मद अशरफ भुल्लर साहेब शहीद इबन मुकरम मोहम्मद अब्दुल्ला साहेब शहीद मरहूम के अबाउजदाद रख शेख जिला लाहौर के रहने वाले थे। इनके दादा मुकरम चौधरी سکندر احمد صاحب احمدی ہوئے تھے، چوبی فتح احمد صاحب سابق امیر ضلع لاہور کے تایا تھے، اب نائب امیر ضلع، ابا اجداد کے ذریعے زمین کی کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد رائے بنڈ میں اینٹوں کا بھٹا بنا لیا، تعلیم صرف پرائمری تھی، 2004 میں عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے اور سب بھائیوں کو جماعتی کام کرنے کی تلقین کرتے تھے، شہادت کے وقت ان کی عمر 47 سال تھی، گھر کے واحد کفیل تھے، ماڈل ٹائم کے مسجد میں شہادت ہوئی، جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، ثانیہ کے روز بھی مسجد بیت النور کے ہال میں تھے، ہال کا چھوٹا دروازہ بند کر کے کمر دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے آگے کھڑے ہو گئے، دہشت گرد باہر سے زور لگاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھولنے دیا، تو دہشت گرد نے باہر سے ہی گولیوں کی بچھاڑ کر دی جس سے ان کی کمر چھلنی ہو گئی اور موقع پہ شہید ہو گئے، دروازہ توڑنے کے لیے جو گولیوں کی بچھاڑ کی تو ان کو لگتی رہی، دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، اپنے علاقے میں اپنی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے، بعض غیرت جماعت بھی ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، اور 30 مئی کو نوائے وقت اخبار میں یہ خبر آئی کہ جنہوں نے بھی ان کا جنازہ پڑھا ہے غیر احمدیوں نے، مولویوں کی طرف سے اعلان ہوا ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اور ایکسپریس ٹی وی پر بھی خبر چلتی رہی، یہ مولوی تو جنازہ پڑھنے کو بڑی بات ہے، یہ تو جنہوں نے تعزیت کی اور ہمدردی کی ان کے بھی نکاح توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد تہجد کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ ہو گئے تھے، قرآن کریم پڑھنے کی بھی تلقین کرتے تھے روزانہ، کہتے تھے چاہے اپنے بچوں کو بھی کہ قرآن کریم روزانہ پڑھو چاہے ایک لائن پڑھو اور پھر ترجمہ پڑھو کیونکہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، مکرم مبارک احمد طاہر صاحب شہید ابن مکرم عبد المجید صاحب شہید لاہور کے رہنے والے تھے، ان کی دادی محترمہ قادیان کی تھیں، ان کے والد محترم نے حضرت مسلم محمود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی، یہ ایک بینک میں ٹائپس کے طور پر بھرتے ہوئے اور اس سروس کے دوران پہلے بی اے کیا پھر ایم اے کیا اور بینک کے مختلف کورسز بھی کیے، اور بینک میں ترقی کرتے کرتے نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت، اور سینئر پریزیڈنٹ کی پروموشن بھی ان کی ڈیو تھی، بیسٹ امپلائی آف دا بینک کا ان کو کیش پرائز بھی ملا، مولانا دوست مصحف شاہد مرحوم مورخ احمدیت کے یہ داماد تھے، شہادت کے وقت ان کی عمر 57 سال تھی، بطور نائب قائد ناظم تعلیم حلقہ دار ذکر خدمت سر انجام دے رہے تھے، اللہ کے فضل سے موسی تھے، ثانیہ والے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں آئے اور خود مین ہال میں پیچھے بیٹھ گئے اور دونوں بیٹے دوسرے ہال میں بیٹھ گئے، جب دہشت گرد نے اپنی کارروائی شروع کی اور مربی صاحب نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی، دعا کے دوران ہی ایک گولی ان کے بائیں بازو میں لگی اور دوسری دل کے پاس، جس سے موقع پر ان کی شہادت ہو گئی، بہت ہمدرد انسان تھے، بینک میں اپنے لیول کے آفیسر سے اتنی دوستی نہیں تھی جتنی کہ اپنے ماتحت ورکر سے دوستی تھی ان کی، اپنے گھر میں نماز سینٹر بنایا ہوا تھا اور پہلی منزل سے اس نماز سینٹر کے لیے تعمیر کروائی تھی، خلافت سے بہت عشق تھا، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جماعتی کام سے واپس آتے ہوئے اگر رات کے 3 بجے بچ جاتے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، اگر بچے گئے ہیں اور کسی جماعتی کام میں مصروف ہیں رات کے 3 بج جائیں تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر کسی اور کام سے ہم گھر سے باہر جاتے اور عشاء کی نماز سے لیٹ واپسی ہوتی تو بڑی ڈانٹ پڑا لگتی تھی، سخاوت ان کی زندگی کا ایک بڑا بڑا خلق تھا، لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں مفت دے دیا کرتے تھے، مربیان سے بہت لگاؤ تھا، مربیان سے اصلاح تھے، بہت عزت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، جہاں بھی گھر لیا یا حلقے کا مرکز اور سینٹر اپنے گھر کو ہی بنانے کی کوشش کرتے تھے، بہت ملنسار تھے، مکرم انیس احمد صاحب شہید انیس احمد صاحب شہید ابن مکرم صوبہ دار منیر احمد صاحب شہید، مروں کا خاندان जिला फैसलाबाद से था, जहां से बाद में लाहौर शिफ्ट हो गए। मैट्रिक की तालीम के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते थे। गुलबर्ग में इनका ऑफिस था। शहादत के वक्त इनकी उम्र 35 साल थी। निजाम वसीयत में शामिल थे। मस्जिद और जिक्र में इनकी शहादत हुई। नमाज जुमा की अदायगी के लिए अमूमन मॉडल टाउन जाया करते थे। सानिया के रोज किसी काम से निकले और नमाज जुमा के लिए मस्जिद और जिक्र चले गए। अपने वाले साहब के साथ मेहराब के करीब बैठे थे। फायरिंग शुरू हुई तो वाले साहब ने छुपने के लिए कहा, तो जवाबन कहा कि आप छुप जाएं, मैं इधर लोगों की मदद करता हूं। और इस दौरान दहशतगर्द की गोलियों से शहीद हो गए। बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसी तरह वाले साहब भी बहुत इताअत करते थे। ससुराली रिश्तेदारों से भी भाइयों जैसा ताल्लुक था। खिदमत खल का बहुत शौक था। एक जगह किसी हिंदी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त फौरी तौर पर खून नहीं मिल रहा था, तो अपना खून दे दिया। और फिर उसने इलाज के लिए पैसे मांगे कर्ज के तौर पर, 5,000 या कितने, तो वो दे दिए और कर्ज वापस भी नहीं लिया। अपने बेटे को बाकायदगी से कुरान क्लास के लिए भिजवाते थे और जमाती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस सानिया में उनके छोटे भाई मुकर्रम मुनव्वर अंसार भी शहीद हो गए। मुकर्रम मुनव्वर अंसार शहीद, इब्न मुकर्रम सूबेदार मुनीर अंसार, ये भी अपने भाई की तरह इनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। पैदायशी आंधी थे लेकिन कुछ अर्सा शिया अकायद की तरफ मारे रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी नानी जो जाकरा थी उनके पास परवरिश पाई थी। खुद भी जाकर और पीर बन गए थे। और इसी दौरान फिर उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली को देखा। वो आए हैं और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के बारे में उनको बताया, तो दोबारा इन्होंने बैत कर ली और बड़े फ़ाल कारकुन थे। फितरत में एक थी, अल्लाह ताला ने खुद इनकी रहनुमाई फरमा दी। अहमदीत का बहुत इल्म था, बहुत अहमदी भी तबलीग करते थे और बहुत सारी बैतें भी करवाई इन्होंने। दावत अल्लाह के शदाई थे, बड़े बड़े मौलवियों को लाजवाब करते थे। शहादत के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। बतौर नायब नाज़िम इस्लाह अरशाद खिदमत की तौफीक मिली। अल्लाह के फज़ल से मूसी थे। दारुल ज़िक्र में उनकी शहादत हुई। दारुल ज़िक्र नमाज जुमा के वक्त हमले के वक्त ये बैरूनी गेट से फायरिंग की आवाज आई, तो ये निहायत फुर्ती से क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकले और जल्दी से वापस आकर मेन हॉल की तरफ जाने वाले अंदरूनी गेट बंद किया और हॉल के मेन गेट में दरवाजे बंद करवाए। हमले के दौरान मुसलसल घर फोन से रब्ता रखा और अपने चचा से दुआ के लिए कहते रहे और कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरी दुआ करें। एक ऐनी शायद दोस्त ने बताया कि हमला के शुरू में ही हॉल के अंदर आए और जोर से आवाजें देनी शुरू कर दी कि अगर किसी के पास असला है तो दो मुझे क्योंकि दहशतगर्द अंदर आ गए हैं। लेकिन वहां मस्जिद में नमाजें पढ़ने आए थे लोग, असला लेकर तो नहीं आए थे। इसके बाद जब अंदर फायरिंग से लोग जख्मी हुए और जब दहशतगर्द हॉल से ऊपर जाते तो ये मौका पाकर बड़ी फुर्ती से क्रॉलिंग करते हुए जख्मी बुजुर्गान को पानी पिलाते रहे। पुलिस और इंतजामिया यही इतराज कर रही है ना, आप लोग क्यों असला लेके बैठे हुए थे। जो गैर अहमदियों का तो काम यही है कि वो लेके बैठ सकते हैं लेकिन अहमदी नहीं, क्योंकि या पुलिस बिल्कुल हाथ उठा ले और कहते कि अपनी हिफाजत खुद इंतजाम करें। बहरहाल मुसलसल मौके की तलाश में रहे कि दहशतगर्द को पकड़े। बिलाखिर मौका पाकर निहायत बहादुरी से दहशतगर्द को पकड़ा, जिसकी वजह से दहशतगर्द ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की वजह से ये भी शहीद हो गए। इनको शुरू में मालूम हो चुका था कि उनके भाई मुकर्रम अनीस अंसार शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बहादुरी से लोगों की मदद करते रहे। इनके घर बड़े रस्ते से बाहर मुनाफरत फैलाने वाले इश्तिहारात और पोस्टर चस्पां थे। इससे पहले भी गैर जमात इंतशार पसंद ऐसी कार्रवाइयां करते रहते थे, लेकिन शहीद मरहूम ने पोस्टर लगाने वाले बच्चों को वजह से काम करवाते हैं। बच्चों को बड़े प्यार और अखलाक से समझाया और बच्चों को असर भी हो गया, उनको समझ आ गई, लेकिन फिर वो बड़ों के कहने पर मजबूर थे, लगा जाया करते थे। इनके नाजम सलाह शाह जिला नवरा में साहब ने बताया कि सानिया से करीबन एक डेढ़ माह कबल उन्होंने अपनी एक ख्वाब मुझे बताई। ख्वाब में उनकी वफात याफ्ता वालदा मिली है, उनका है कि मैंने तुम्हारा कमरा तैयार कर लिया है, मैं तुम्हें बुला लूंगी। حافظ مظفر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں کو پہلے بتا دیا تھا، بلکہ شادی ہوئی پچھلے سال تو اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا پہلے دن ہی کہ میں نے تو شہید ہو جانا ہے، اس لیے میرے شہید ہونے کے بعد کوئی واویلا نہ کرنا. ایک شہید ہیں مکرم سعید احمد صاحب ایون مکرم صوفی منیر احمد صاحب، ان کا میں جنازہ غائب بھی پڑھوں گا آج. شہید مرحوم کے باوا اجداد ضلع کرنال بھارت کے رہنے والے تھے، ان کے پردادا حضرت رمضان صاحب رضی اللہ عنہ اور ساتھی حضرت وسیم علیہ السلام تھے، جس کے بعد تخت ہزارہ ضلع سگودہ میں آباد ہوئے. خاندان لاہور میں مقیم تھا. شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی. مسجد بیت النور مارٹن میں شہید ہوئے. یہ کام سانحہ کے روز کام سے سیدھے جمعہ پڑھنے چلے گئے مسجد بیت النور میں. ان کے پہنچنے سے پہلے مسجد میں فائرنگ شروع ہو چکی تھی. دو تحصیل گرد جو مارٹن موٹر سائیکل پر آئے تھے، اپنی موٹر سائیکل پھینک کر گیٹ پر فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے تھے. چند سیکنڈ بعد موٹر سائیکل پھٹ گیا، یہ اس کے قریب تھے، اس کی وجہ سے ان پہ آگ لگی اور جسم جھلس گیا. 8 دن ہی اسپتال میں رہے ہیں لیکن جان بر نہ ہو سکے، اور 5 جون کو جامع شہادت نوش کیا. شہادت سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی بہن کو گاؤں فون کیا کہ ایک دیگ پکوا کر، گوشت کی دیگ پکوا کر تقسیم کر دو. خواب دیکھے تھے انہوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر تھی. اور پھر جمعے والے دن بچوں کو تیار کیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر کام کے لیے نکل گئے. اور اس کے بعد پھر مسجد نور چلے گئے جمعہ پڑھنے. مرحوم کی بیوہ نے چند داریاں دکھائی ہیں جن میں کئی مقامات پر لکھا تھا کہ شہادت میری آرزو ہے انشاءاللہ. ڈائری میں ایک اور جگہ تحریر ہے کہ اے اللہ شہادت نصیب فرما، یہ گردن تیری راہ میں ہی کٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تیری راہ میں ہوں میں، پیارے حبیب کے صدقے میرے مولا میری یہ دعا قبول فرما، آمین. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی. 30 مئی 2000 کے وہ لکھا تھا الفاظ تھے. ڈائری میں نمازوں کی ادائیگی، جمعہ کی ادائیگی، خطبہ جمعہ کے مختصر خلاصہ نوٹس، چندہ جات کی باقاعدہ ادائیگی کا جا بجا ذکر ملتا ہے. اور تخت ہزارے بھی کیونکہ رہنے والے تھے وہاں، جو شہید ہوئے تھے 4-5 کچھ سال پہلے، ان کے لیے دعا کی تحریک کا بھی ذکر ملتا ہے. والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے، غربا کو صدقہ دیتے تھے، بہت ہنسمکھ تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، ماں باپ بہن بھائی اہلیہ کا سب کا خیال رکھتے تھے. ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا انہوں نے جس میں روزانہ کچھ رقم ڈال دیتے تھے، اور جب گاؤں جاتے تھے تو وہاں مستحقین میں تقسیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تمام شہداء جو ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. یہ تمام شہداء قسم قسم کی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور ان کی نیک خواہشات اپنے بیوی بچوں اور نسلوں کے لیے قبول فرمائے. سب کو صبر و حوصلہ اور سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ذکر خیر تو ابھی آئندہ بھی چلے گا. اس کے علاوہ آج کی جنازہ غائب میں ایک اور جنازہ غائب میں پڑھاؤں گا جو مکرم ڈاکٹر محمد عارف صاحب واقف زندگی کا ہے، جو مکرم محمد صادق صاحب ننگلی درویش قادیان کے بیٹے تھے، خود بھی درویش تھے مگر قادیان نہیں تھے. 13 جون 2010 کو 53 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انہا اللہ و انہا الیہ راجعون. 30 سال تک مختلف جماعتی عہدوں پر آسمان میں خدمت انجام دیتے رہے. ابتدا میں نائب ناظم وقف جدید تھے، پھر نائب ناظم بیت المال آمد، نائب ناظم نشر و اشاعت رہے. 1995 میں ناظم بیت المال خرچ مقرر ہوئے اور تا وفات اسی عہدے پر فائز رہے. اس کے علاوہ 8 سال تک نادر تعلیم کی حیثیت سے بھی خدمت بجا لاتے رہے. 6 سال تک صدر مجلس خدام الحمدیا بھارت اور پھر نائب صدر مجلس انصار اللہ انڈیا بھی رہے. 1993 میں افسر جلسہ سلانہ قادیان مقرر ہوئے اور نہایت عمدگی سے فریضہ سے انجام دیا. 2005 में जब मैं गया हूं कादियान तो सिर्फ भी यही अफसर अफसर सलाना थे और बड़ी हिम्मत और मेहनत से उन्होंने सारे मेहमान को संभाला। बावजूद से भी इनकी तबीयत में कुछ बात ब्लड प्रेशर वगैरह की वजह से लगता था कि असर नजर आ रहे हैं। सैयदा मिर्जा वसीम साहब के दौर में भी और उनके बाद भी कई मरतबा इनको कायम काम नाजरे आला खुद की तफरीक मिली और मियाँ साहब की वफात के बाद तो इनको नायब अमीर मुकाम भी मैंने मुकर्रर किया था। सदर अमन अहमदिया के अलावा अंजुमन तहरीक दीद और अंजुमन वक्फ़ी दीद और मजलिस्कार प्रदास के भी मेम्बर थे, सदर फिनांस कमेटी थे, इसी तरह नूर अस्पताल की कमेटी के सदर थे, मुख्तलिफ खदमात बजा लाते रहे। इन्होंने उर्दू में एमए करने के बाद गुरु नानक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। बड़े पवन तहजद के नमाजों के खिलाफत वालेहाना मोहब्बत रखने वाले मुखलिस और बावफा इंसान थे, अक्सर सच्ची खाद में आया करती थी और इन्होंने अपनी अहलिया को बता दिया था कि लगता है मेरा वक्त करीब है तो इसलिए तैयार रहना। फेफड़ों में इनके पहले इनके गुर्दों फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, पहले गुर्दे इनके खराब हुए, लंबा अरसा डायलिसिस पर रहे, फिर गुर्दा तब्दील भी हो गया लेकिन संभल नहीं सकी हालत, लेकिन बड़े सब्र और हौसले से बड़ी लंबी बीमारी उन्होंने काटी है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया आखिर में। मैंने भी इनको हमेशा जैसा कि मैंने कहा हंसते मुस्कुराते देखा है। 1991 में भी मैंने इनके साथ ड्यूटी दी है जैसे चलाने पर आम कारकुन की हैसियत से, उस वक्त भी मैं देखता था, बाद में भी मैंने देखा अपने वक्त में भी कि खिलाफत के लिए तो इनकी आंखों से भी एक खास मोहब्बत और प्यार टपकता था। बड़ी मेहनत से ड्यूटी देते थे और अफसरान के सामने हमेशा मोहब्बत रहे और कामिल इताअत करने वाले दिखाते रहे, बल्कि बाज दफा एक कानून में ड्यूटी के दौरान मुझे एहसास होता था कि अफसर बाज दफा इनसे ज्यादती कर जाते हैं लेकिन कभी इनके माथे पर बल नहीं आया, मुस्कुराते हुए कामिल इताअत के साथ अफसर का हुक्म मानते थे और गलती ना भी हो तो कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैंने नहीं किया ये काम। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन दो के जो 5 जून को शहीद लाहौर वालों में से शहीद हुए हैं उनका और इनका नमाज जनाजा गायब जुमे के बाद अदा होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
मैं क्या